مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کا استعمال اور پاکستان کی نوجوان نسل۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ معلومات کا خزانہ، انٹرٹینمنٹ، کاروبار کی دنیا میں انقلاب یعنی ای مارکیٹنگ وغیرہ جیسے مفید پہلوؤں کے ہوتے خواندہ اور ناخواندہ نوجوانوں کو یہ کس طرح متاثر کر رہا ہے، کیا تعلیم میں فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ وقت کے ضائع کا باعث ہے، ذہنی صحت کو کتنا متاثر کرتا ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے، کیا آج کا پاکستانی نوجوان جانتا ہے کہ اس کے استعمال کے ایتھکس کیا ہیں۔ ان سب پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی، جو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے میس میڈیا کے شعبے سے منسلک ہیں اور ذہنی طور پر یہ نوجوانوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر نوید سلطان آوان، جو پروگرام میں کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، اور آج کی نوجوان نسل کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ نوجوان طالب علم بھی موجود ہوں گے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے امیر احمد رانجھا نے، ایف اے کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ راولپنڈی سے دلاور خان ہمارے ساتھ ہوں گے، جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے اور جن کو ای مارکیٹنگ کا بھی تجربہ ہے، وہ بزنس میں بھی نو ہاؤ رکھتے ہیں اور کس طرح سے انٹرنیٹ کا استعمال ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان سے جانیں گے۔ اور پنڈ مکو سے عبداللہ ہمیں جوائن کریں گے، جنہوں نے مڈل پاس کیا ہے، ان سے جانیں گے کہ تعلیم کے علاوہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ جو ہے اس کا استعمال وہ کیسے اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اور لاہور سے اسرا عباسی ہمیں جوائن کریں گی، اے لیول کی طالبہ ہیں، اور ایک والدہ سے بھی ہم بات کریں گے، فیصل آباد یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، پروفیسر ہیں، دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی والدہ ہیں، ڈاکٹر آسیہ شہباز، جو پروگرام میں ہمیں بعد میں جوائن کریں گی۔ آپ بھی اگر ہمارے موضوع سے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-777-8789 یعنی 0800-777-8789۔ سب سے پہلے ہم آئی ٹی ریسرچر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شہزاد علی، آپ اعداد و شمار پر سب سے پہلے کچھ روشنی ڈالیے کہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا تک کتنی آبادی کو رسائی ہے پاکستان میں؟
بہت شکریہ جی مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ پاکستان میں 4G ٹیکنالوجی انٹروڈکشن کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کمپیوٹر میڈیٹیڈ کمیونیکیشن ہیں وہ بہت کنوینئنٹ ہو گئی ہے۔ 145 million پاکستان میں اس وقت ایکٹیو سم ہیں، تو 45 million کا اگر آپ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی آبادی اگر 21 crore ہے تو 21 crore آبادی میں سے 60-65% جو آبادی ہے اس کو ایکسیس ہے انٹرنیٹ تک۔ انٹرنیٹ تک ایکسس میں ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان ٹاپ 30 ممالک میں ہے جہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ موبائل فون کی پینٹریشن ہے۔ آپ کو یہ پتا کہ موبائل فون جو ہے ملٹی ڈائیورس فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اپارٹ فرام لیپ ٹاپ، اپارٹ فرام آپ بات کریں ڈیسک ٹاپ اسٹیشن کے، موبائل فون کی پینٹریشن کی وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آپ پاکستان میں مارکیٹس کو وزٹ کریں، تعلیمی اداروں کو وزٹ کریں، کسی ریکریشنل ایکٹیویٹیز یا کی پلیس پہ چلے جائیں، ریسٹورینٹ تک، آپ کو جو نوجوان ہیں اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے موبائل فون پر مصروف نظر آئیں گے، یا تو وہ کوئی کامنٹس کر رہے ہیں یا کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں یا کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے ہم لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ انٹرنیٹ نے پاکستان کی سوسائٹی میں ایرسپیکٹیو آف ڈفرینٹ ایج گروپ، ایرسپیکٹیو آف پروفیشن، ایرسپیکٹیو آف کہ پیپل آر ایجوکیٹڈ اور ناٹ ایجوکیٹڈ، دے آر یوزنگ انٹرنیٹ ان پاکستان نا۔ تو ساؤتھ ایشیا کے اندر نا انڈیا اور پاکستان جو ہے وہاں پر انٹرنیٹ کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشیل بھی ہے۔
صحیح، تو شہزاد، کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ کتنا استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ؟
دیکھو، اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو لائٹ یوزرز ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس وہ افراد ہیں جس کے ہیوی یوزرز ہیں۔ لائٹ یوزرز اس کو یوز کر رہے ہیں لیس دین 3 hours میں، اور جو ہیوی یوزرز آف انٹرنیٹ ہیں دے آر گوئنگ ٹو یوز مور دین 6 hours اے ڈے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے دن کا جو 1/4 टाइम जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हो इंटरनेट या सोशल मीडिया का, मतलब लोगों की जो रात की जो लास्ट एक्टिविटी है, जो एक स्टडी मैंने 2019 में करवाई थी, वो लास्ट एक्टिविटी ये है कि लोग अपने सोशल मीडिया की जो डिफरेंट साइट्स हैं उसके अपने स्टेटस से या तो अपलोड करते हैं या चेक करते हैं, उसके बाद देर डोंट परसीव ओके अर्ली इन द मॉर्निंग वो व्हाट्सएप है या वाइबर है या डिफरेंट तरह की जो भी है, वो दिन की शुरुआत जो है इवन बिफोर स्टार्टिंग द डे दे चेक देयर सेल फोन। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि जो अलर्ट्स आ रही है, अपडेट्स आ रही है, तो नौजवान हैवीली यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन एकेडमिकली उनके लिए सूटेबल है, क्या वो इंफॉर्मेशन उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए बेहतर है, पोलिटिकल सोशलाइजेशन में कितना रोल अदा कर रही है, तो इस पर एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है वो सेल्फ डिस्क्लोजर के लिए होता है। सेल्फ डिस्क्लोजर क्या है? मिसाल के तौर पर आप पिज्जा खाने के लिए गए हैं, आप बर्गर खाने के लिए गए हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं किसी कॉन्टिनेंटल फूड के लिए, तो पाकिस्तान में मेजोरिटी जो नौजवानों के लिए, मैं आपको रिसर्च बेस्ड आदाद शुमार आपको शेयर कर रहा हूँ, पहले वो किसकी तस्वीर अपलोड करेंगे। और इवन हमें तो स्टडी में ये भी पता चला है कि किसी यूजर ने अगर पानी पीने के लिए भी स्टेटस लिखा है कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ या पानी पीने जा रही हूँ, तो बहुत सारे पेटी इश्यूज, माइनर इश्यूज भी लोग सोशल मीडिया के जरिए अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है ना, जो जो जिसको पाकिस्तान में टीनेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव नहीं है, उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात है। फिर दूसरा ये कि तस्वीरें अपलोड करने का बहुत रवाज है, मोर देन 90% पीपल जो है ना दे आर शेयरिंग देयर पिक्स, देयर शेयरिंग देयर पिक्स, और वो पिक्स भी वो है जिनको वो एडॉप्ट पर जाकर एडिट करने के बाद शेयर करते हैं। तो इंटरनेट में जो कुछ जिस तरीके की पिक्चर्स हैं वो ज्यादा ग्लैमराइज्ड है, और उसकी मदद से फिर डेफिनेटली लोगों के जो रिलेशनशिप बनते हैं और जब वो फिजिकल वाइज में एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है कि यार जो हकीकी इंसान जिसे फिजिकल वाइज में मिले वो तो बिल्कुल वैसा नहीं है जिससे उनका इंटरेक्शन हुआ है सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया जो है इसकी वजह से पाकिस्तान के समाज में बहुत सारी खराबियां भी पैदा हुई हैं, साइबर क्राइम्स में भी इजाफा हुआ है।
बिल्कुल, मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाह रही थी कि जब इतना इंटरनेट का इस्तेमाल आम है और हर एक की पहुंच में है और हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? कोई ऐसा एक्ट मौजूद है पाकिस्तान में जो चेक एंड बैलेंस रखता है?
देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने ना, मतलब पॉजिटिवली स्पीकिंग अगर बात करी तो गवर्नमेंट ने अब इस पर तवज्जो देनी शुरू की है। अभी भी हम मतलब ये कहते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी नहीं गुजरा है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लेने शुरू किए हैं। और FI जो पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने एक साइबर सेल बनाया है। कोई आपको हैरास करता है, कोई आपको ब्लैकमेल करता है, कोई आपकी ऐसी वीडियो शेयर कर देता है जो कि अनएथिकल है, तो अभी इदारे हरकत में आते हैं और लोगों को पिनलाइज भी किया गया है, फाइन भी किया गया है। तो लेकिन अभी लोगों को इसमें अवेयर करने की जरूरत है कि अगर कोई शख्स आपको इंटरनेट में बुलिंग प्रैक्टिस इस्तेमाल करे, इंटिमिडेट करे, ब्लैकमेल करे, क्योंकि ज्यादातर खवातीन जो है ना वो विक्टिम बनी है हमारे समाज में। आपको पता है कि जब रिलेशनशिप में होते हैं तो दे क्रॉस द सर्टेन डेडलाइन और उसके बाद में पता चलता है कि जनाब जो दूसरी तरफ से इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो फीमेल कुछ एक्सप्लॉइट भी हुई है इस सोशल मीडिया की वजह से। पहले लोगों में आप ये देख लें कि कम्युनिकेशन जो थी ना बहुत मुश्किल थी, मतलब इफ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद समवन तो आपको बड़ा लोगों को परसू करना पड़ता है, लैंडलाइन नंबर लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आप किसी को ट्रेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्राइवेसी का बहुत बड़ा इश्यू पैदा हुआ है। बदकिस्मती से लोग जो है वो मीडिया के मुतल्लिक इतने ज्यादा सोशलाइज नहीं है, न्यू मीडिया के मुतल्लिक ना लोगों को, लोग अपने वेयर अबाउट शेयर कर रहे हैं कि आप बता रहे हो जी कि अभी आप किस टर्मिनल पर हो, किस बस स्टॉप पर हो, किस रेस्टोरेंट में हो, तो इसकी वजह से लोगों की जो वेयर अबाउट है उनका पता चला और कुछ लोगों ने इसको मिसयूज भी किया।
बिल्कुल, और खास तौर पर शहजाद, मैं चाह रही थी कि अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में टेररिज्म में कितना इस्तेमाल इसका होता है और उससे बचाव किस तरह हो सकता है उस पर जरूर बात करें, लेकिन आज मैं चाहती थी कि थोड़ा सा हम अपनी जो नौजवान नस्ल है या वो लोग जो दूर दराज के गाँव में हमारा प्रोग्राम ज्यादातर सुना जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, रेडियो पर लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो उनको थोड़ी सी आगही हो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के कुछ एथिक्स होने चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल होता है, और अगर कोई आप को वहां पर ब्लैकमेल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है आपकी तस्वीरों का तो आप कहां कहां रابطہ कर सकते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर आपको उस सिलसिले में आप रुजू कर सकते हैं।
کیونکہ بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں جب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو پھر انفارمیشن کو سرچ کرنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو آپ ان اداروں کے نمبرز ان اداروں کی ای میل آئی ڈی تک ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو ایف آئی اے ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس نے سائبر سیل قائم کیا ہوگا, اس کے نمبرز آپ کو پتا, آپ ان نمبرز پر ایکسیس کر سکتے ہیں, ان کو ای میل کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پھر جو ادارے وہ حرکت میں بھی آئیں گے, اتنے ریپڈ نہیں ہیں جتنی ویسٹرن سوسائٹی میں. دوسری جو ریزن ہے نا جو ہمیں دیہی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو دینا ہے, پاکستان میں انٹرنیٹ کو پروڈکٹیو پرپز کے لیے اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جا رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی آئی سی ٹیز پڑھنا, ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہا ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں کیا رول ادا کی ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان میں پروگریسو فارمنگ کو ابھی اتنا اڈاپٹ نہیں کیا گیا, بلکہ ابھی پروگریسو فارمنگ پر پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, انہوں نے اپنے 11 نکاتی ایجنڈے میں بھی بولا کہ جناب ہم چاہیں گے کہ ایگریکلچر جو ڈیولپمنٹ میں ہم ایمرجنسی لگائیں. تو اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی سمجھتی ہیں کہ جو آئی سی ٹیز ہیں اس کو آپ ایگری ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال نہیں کر رہے. تو ہمارے یہاں لوگ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کیسے کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا کو دیہی علاقوں میں. یہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کا سب سے سستا ترین ذریعہ. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ انڈین اور پاکستانی اور گانوں کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, موویز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو اس پرپز کے لیے آپ استعمال انٹرنیٹ کو زیادہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو دیتا ہوں اعداد و شمار میں. 2-3 سال پہلے میں نے پاکستان میں پورنوگرافی کنزمپشن پہ ایک ریسرچ کروائی تھی, تو پاکستان واز امنگ دا ٹاپ 3 کنٹریز آف دا ورلڈ جہاں پر یہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے پورنوگرافی کانٹینٹ کا ایکسیس اور اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور جتنے بھی دنیا کے انٹرنیشنل سروس تھے وہ یہی بتا رہے تھے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ لوگ اپارٹ فرام دا ریسرچ اسٹوڈینٹس, لوگ اپنی اسائنمنٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. لوگ زیادہ کر کیا کر رہے ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہیں یا وہ ڈیٹنگ ویب سائٹس ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے. میں اس کو جنرلائز نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ریسرچز بتاتی ہیں, میں آپ کو پروگرام بور نہیں کروں گا, وہ ہے کہ میجورٹی آف دا ریسپونڈنٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ کو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کے کانٹیکٹ میں استعمال کرتے ہیں, یا یوٹیوب استعمال ہو رہی ہے, یا ڈیلی موشن, یا دوسری بھی ویڈیو شیئرنگ کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں وہ پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کا آپ کو اندازہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اوبسینٹی کے مبنی کوئی کانٹینٹ ہے, کوئی بڑا ہی گلیمرائز گانا ہے, آپ یہ دیکھیں اس کے یوزرز کتنے ہیں, اس کو کتنے لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں, کتنے لوگوں نے اس کو ہٹ کیا, تو وہ تعداد آپ کو لاکھوں میں ملے گی. اور جتنا کوئی کانٹروورشل کانٹینٹس ہوتا ہے تو پاکستان میں لوگ بڑے, دنیا کے باقی لوگ ہوتے ہیں, پاکستان میں لوگوں کی کیوریوسٹی ہے, اسکینڈلس کو لوگ زیادہ ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے, وہ انفارمیشن دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی میشا شفیع اور علی ظفر کا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس نیوز کو اور میشا شفیع کی ویڈیوز کو کتنے لوگوں نے ایکسس کیے. تو انٹرنیٹ کی وجہ سے پاکستان کی سوشل لائف میں, خاص طور پہ دیہی علاقے میں, بہت ہی نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے. ادروائز تو اگر اس کو پروڈکٹیو پرپز کے لیے استعمال کرتے تو لوگ تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے تھے, لوگ ای لرننگ کے طور پہ انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا سکتا تھا, بہت ہزاروں کی تعداد میں لیکچرز موجود ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے تھے, آپ ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
بالکل شہزاد, ڈاکٹر شہزاد آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں جو آج کی نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں, تو انہوں نے آپ کی گفتگو سنی ہے, تو میں ان سے ان کو اپنے پروگرام میں موقع دینا چاہوں گی اور ان سے جانوں گی کہ ان کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا معنی رکھتا ہے یا کیا ہے, وہ کیا اس سے حاصل کرتے ہیں, یوزفل کتنا ہے, اور اس کا استعمال جو ہے ان کی تعلیم میں کس طرح سے رکاوٹ بن رہا ہے. تو سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر احمد. جی احمد, ویلکم ٹو دا راؤنڈ ٹیبل. سب سے پہلے تو یہی آپ بتائیں کہ آپ کے لیے انٹرنیٹ کیا ہے.
تھینک یو خادیہ جی. انٹرنیٹ پاکستان میں اب اسٹوڈنٹ جتنا ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ڈفرینٹ پازیٹیولی اتنا استعمال نہیں ہو رہا. اسٹوڈنٹس موسٹ آف دا ٹائم اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں, تو یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس بات کا, کیونکہ ہماری یوتھ میں اس کا اتنا زیادہ پازیٹیولی یوز ہوتا نہیں ہے, نہ اسٹڈیز میں کوئی خاص رول اس کا لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ زیادہ تر یوٹیوب یا ڈیلی موشن وغیرہ پہ اسٹوڈینٹس ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں, انسٹیڈ جو ان کو اپنی اسٹڈیز کو دینا چاہیے. تو میرے خیال سے یوتھ کو کافی زیادہ افیکٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی پاکستان کی میں, کیونکہ یہاں پہ کوئی خاص کاؤنسلنگ ہو نہیں رہی اس کی, یوزز کی پیرنٹس چیک نہیں ہے, تو کافی مسائل کی وجہ سے پاکستان کا यूथ है जो एक आम एवरेज स्टूडेंट है वो इसको अच्छे वे में यूज या यूटिलाइज नहीं कर पा रहा।
जी अहमद, अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की सेल्फ डिस्क्लोजर की, उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो आप कितना अग्री करते हैं इस बात से? क्या जब भी आप कहीं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या मूवी देखने या किसी भी ऐसी जगह पर, तो क्या फौरन तस्वीर खींच के लगाना कितना ज़रूरी समझते हैं?
अब आजकल तो यूज का ट्रेंड है ना, हर जगह जाने से पहले उसके जाके क्या घर से निकलने पहले भी बताना होता है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो ये तो बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में तो इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। आप जिस शख्स, जिस स्टूडेंट को देख लेंगे, जिस यंगस्टर्स को देख लेंगे रेस्टोरेंट में, खाना बाद में खाएंगे, पहले अपने मोबाइल फोन निकालेंगे, तो ये तो काफी इसके बारे में नेगेटिव है ये।
बिल्कुल, और डॉक्टर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। कोई अगर अनजाने में कोई किसी को टारगेट कर रहा है, किडनैपिंग में मुलव्वस है कोई, या किसी भी तरह के क्राइम में, या कोई दूसरा क्या सोच रहा है किसी के बारे में, तो आप अपने वेयर अबाउट्स जो हैं वो मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त आप कहाँ हैं, फिर आप कहाँ हैं। तो इस डॉक्टर, जी जी,
ये स्टॉकर्स को काफी हेल्प कर सकते हैं ना, कि अगर आप उसको शख्स कंटीन्यूअसली स्टॉक कर रहा है, तो उसको आपके वेयर अबाउट्स का, आप कहाँ पे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं, तो काफी आसान हो सकता है। और पाकिस्तान में तो हर जगह पे हो रहा है, तो अगर एक बंदे की लाइफ अगर है, आपको एक बंदा स्टॉक कर रहा है और आप कंटिन्यूअसली अपने बारे में अपडेट्स दे रहे हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हूँ, तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली डेंजर में है।
बिल्कुल, जी अमीर अहमद, शुक्रिया, हमारे साथ ही रहें। मैं दिलावर खान को मौका दूंगी जो रावलपिंडी से हमारे साथ हैं। दिलावर, जब आप स्कूल में थे या अर्ली कॉलेज की जो आपकी लाइफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त इंटरनेट जो है वो इतना आसानी से दस्तियाब था, और ये आलम था जो अब है 4G और 3G, और हर जगह इतना तेज़ और फास्ट इंटरनेट जो है वो मौजूद है। तो आपने वो वक्त भी देखा, और फिर यूनिवर्सिटी में थे आप, तो तब उस वक्त तक तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से दस्तियाब थी। तो फ़र्क क्या देखते हैं इस वक्त जो अमीर अहमद की उम्र के लोग हैं, जो FA कर रहे हैं, जो A-level कर रहे हैं, या जो कॉलेजेस में हैं, वो कितना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं, और आप इंटरनेट ना होते हुए कितनी तवज्जो दिया करते थे? तो थोड़ा सा आप कंपैरिजन बताइए।
थैंक यू सादिया फॉर टेकिंग मी इन योर शो। हमारे दौर में वाकई तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब सिर्फ इंटरनेट का यूज ईमेल्स वगैरह सेंड करने के लिए ही किया जाता था, इससे ज्यादा इसका यूज नहीं होता था। तो लेकिन अभी जैसे ये डिवाइसेस 4G मोबाइल जो टैबलेट वगैरह इतने ज्यादा मार्केट में आ गए हैं, उसके बाद से हर बच्चे को एक्सेस है इस पे, और जितने ज्यादा सोशल मीडिया की वेबसाइट अवेलेबल है उतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो यूथ है उसके लिए ये इतना टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि उस दौर में भी इतना ही टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि एक्टिविटीज और बहुत ज्यादा होती थी इंटरनेट के अलावा भी। लेकिन अभी वो एक्टिविटीज कम हो गई और उनकी जगह सोशल मीडिया ने ले लिया, आई थिंक वो एक्टिविटीज को रिप्लेस किया सोशल मीडिया ने।
सही, यानी आपके ख्याल में टाइम तो इतना ही नौजवान जाया किया करते थे, लेकिन उस वक्त जराए कुछ और थे, और अब सिर्फ जो है जरिया बदला है। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहें। एक कॉलर है हमारे साथ, इससे पहले कुछ और कॉलर्स भी थे जो ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन इस वक्त तारिक चौताई हैं चूनिया कसूर से। जी तारिक, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम सादिया बहन, मौजू बहुत अच्छा आपने ये आज कर रखा है। मेरा आपके मौजूद मेहमान से एक सवाल ये है कि ये तो एक हकीकत है ना कि इंटरनेट ने ग्लोबल ब्रिज बन गई दुनिया, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या हम मजबूत तौर पर इंटरनेट के इस दौर में नौजवान तबके के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए क्या हम तबाही की तरफ जा रहे हैं या तरक्की की तरफ, एक। और दूसरी बात यह है कि एक वक्त था कि गांव और छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरियां होती थी क्राय की किताबों की, और अब जो स्टूडेंट है बुक्स में उनके मोबाइल होते हैं, इंटरनेट व्हाट्सएप होता है, तो क्या ये नौजवान हमारा जो मुस्तकबिल का सरमाया है वो इस इंटरनेट से तबाही, आंखों के मसले भी बन रहे हैं, तो क्या तबाही की तरफ जा रहा है कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं?
बहुत शुक्रिया तारिक जी। डॉक्टर शहजाद, सवाल आपने सुन लिया तारिक चौताई का, वो जानना ये चाहते हैं कि इसे हम तरक्की कहेंगे या तनजली कहेंगे।
देखिए, इसको स्वीकृत स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे सकता कि हम जनरलाइज कर लें कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमें अभी करना ये है कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं, स्पेशली टीनएजर्स, उन पर हमें ना पेरेंटल गाइडेंस रखनी है, ये देखना है वो किस तरह की वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का डाटा डाउनलोड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है नहीं। जैसे आपके कॉलर ने ये सवाल किया है कि पहले लोग जो है वो बुक्स रेंट पे लिया करते थे, ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज थी, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन बहुत जबरदस्त तरह की फिनोमिनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, पीडीएफ के अंदर लेटेस्ट बुक्स भी मौजूद है। तो हमें अपनी, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जनाब आप पेपर वाली बुक्स पढ़ें, ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ें, आप ऑनलाइन बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं, बहुत सारे ऐसे आर्काइव हैं जहां पर 100 ईयर्स पुरानी किताबें भी मौजूद हैं आपके पास ना। तो अगर हम अपनी यूथ को प्रॉपरली सोशलाइज करें तो इस इंटरनेट की मदद से हम अपनी सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक्सेस 2018 में जितनी आसान हुई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त ना फॉर एग्जांपल फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, फेसबुक के पाकिस्तान में टोटल यूजर गए, एक्टिव यूजर 30 मिलियन, 30 मिलियन का मतलब ये है पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट पे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्टिव यूजर है 2017 तक ना। तो अगर यही लोग इस इंफॉर्मेशन को, इसको फेसबुक को बेहतर पर्पज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान में, लोगों में सियासी शऊर आएगा, लोगों में टॉलरेंस आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती है, ये होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द टेक्नोलॉजी, ये बड़ा मैटर करता है
और आगाह कितने हैं। बिल्कुल
जी।
हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, इससे पहले कि मैं असरा और अब्दुल्ला से बात करूं, उन कॉलर से बात कर लेते हैं। मोहम्मद याकूब ने दादू से कॉल की है। जी याकूब।
सॉरी दादू से नहीं, ट्रिब्यूनरी अदालत हक नसीब मोहम्मद याकूब।
जी बोलिए।
मेरा कहना यह है कि ये फेसबुक का निजाम है ये बहुत खराब है, इसकी वजह से जो उस्ताद है हमारे इलाके में वो भी बैठ के दिन में सिर्फ बैठ के मोबाइल चलाते हैं, पूरा दिन बच्चे खेल रहे हैं, वो तो फेसबुक पे लगे हुए ना
जी।
और उसमें से बहुत यानी कुछ ऐसे वीडियो बन जाते हैं ना, तो उसका रोकने वाला तो कोई नहीं है, जब वीडियो बन जाते हैं तो आदमी को ब्लैकमेल करते हैं कि बोलते हैं या हर रोज हमें मिले ऐसे, यानी बहुत से उसमें खराब भी पैदा हो जाते हैं। हमारे इलाके में न तो कोई ऐसे सुनने वाले हैं तो ना कोई हाल है,
जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब। और अगर अभी आप शो सुन रहे थे तो डॉक्टर शहजाद ने बताया है कि अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो आपकी किसी वीडियो या तस्वीर की वजह से तो आप कहां कहां रابطہ कर सकते हैं, आप अगर सर्च करें कि साइबर क्राइम के लिए आप कहां रजू कर सकते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जहां तक आपने बात की है कि असातिज़ा भी स्कूलों में फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं और बच्चे जो हैं वो इधर उधर खेल रहे होते हैं, क्लासेस नहीं हो रही होती, तो डॉक्टर शहजाद आप खुद टीचर हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की है कि इसका सिर्फ नौजवानों नहीं बड़ी उम्र के जो अफराद हैं और जिम्मेदार ओहदों पे हैं क्या वो भी इसी तरह से अपना टाइम जाया कर रहे हैं?
मतलब मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। देखें समाज में जो नेगेटिविटी होती है ना उसके असरात पूरे समाज के मुख्तलिफ तबकात पे पड़ते हैं, तो जो आपके असातिज़ा हैं वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में यूट्यूब कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई थी, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्या किया, यूट्यूब को ब्लॉक कर डाला उसने, ताकि जो प्रोफेसर ने वो ज्यादा वक्त रिसर्च और प्रोडक्टिविटी की तरफ ज्यादा कंज्यूम करें रादर देन कि वो यूट्यूब पर वीडियोस देखें किसी भी पर्पज के लिए।
सही।
तो हमें पाकिस्तान के अंदर ना मिनहसुल कौम हमें सोचना होगा कि हम अपने इस मुल्क को कैसे बेहतर बना सकते हैं थ्रू यूज ऑफ आईसीटी, और ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन है। मैं इसको इंडिविजुअल देखिए कुछ तो स्टेप्स हैं जो आपने लेने लार्जर स्केल पर, कुछ स्टेप्स आप लेने इंडिविजुअल स्टेज पर ना। इंडिविजुअल में रोल बनता है आपकी फैमिलीज का कि आपकी फैमिलीज आपको कैसे सोशलाइज करती हैं, प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का फैमिली। तो आपके पेरेंट्स का रोल है, आपके सिबलिंग्स का रोल है जो आपको तरबियत दें कि आपने टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि हमें लोगों को कंप्यूटर लिटरेट, मीडिया लिटरेट और इंटरनेट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए लोगों को तरबियत देनी होगी। आप छोटे बच्चों के हाथ में आते हैं जब से मोबाइल आम हुआ है तो पेरेंट्स करते क्या है, मोबाइल फोन बच्चों को दे देते हैं, टच स्क्रीन वाले वो होते हैं, तो बच्चे जो है छोटे बच्चे जो बेबीज 3 ईयर्स के, उनको भी मोबाइल ऑपरेट करना आ जाता है। तो वालदैन माएँ अपने कामों में मसरूफ हो जाती हैं, बच्चे जो है वो नेट पे मसरूफ है, चाहे वो कार्टून देख रहे हैं या दूसरी तरह के कॉन्टेंट्स देख रहे हैं। तो अभी बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया है, और उसका जो इंटरनेट के साथ जो उसका इंट्रैक्शन है वो देखने में आ रहा है, तो ये बड़ा अलार्मिंग है।
बिल्कुल सही, यानी वालदैन की भी सबसे पहले जो है उनकी जिम्मेदारी है एज अ फैमिली यूनिट, वो देखें कि बच्चा क्या कर रहा है। और बिल्कुल मेरी मुख्तलिफ तबके के लोगों से बात भी हुई है इस सिलसिले में, तो वालदैन कई वालदैन ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हाँ वाकई जब वो खुद सोशलाइज़ कर रहे होते हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें, तो उनके लिए सबसे ईजी ये होता है कि वो फ़ोन उनके हाथ में पकड़ा दें और बच्चे से बिल्कुल जान छुड़ा लें। तो आप हमारे साथ रहिए, एक और कॉलर हैं, उसके बाद मैं इसरा आपकी तरफ आऊँगी। अफजल अजीज़ ने चकवाल से कॉल की है। जी अफजल, आपका सवाल।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
पहली तो गुजारिश ये है आपसे और जो भी आपके मेहमान हजरात होते हैं, क्योंकि ये VOA उर्दू प्रोग्राम है, इसमें मैक्सिमम उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किया करें ताकि किसी के पहले भी पढ़े कि क्या बता रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो है ना, कि डॉक्टर साहब से और आपके मौजूद मेहमानों से ये मेरी गुजारिश है, ज़रा इस पर मज़ीद वजाहत करें कि क्या ये हमारे माशरे और कल्चर को तबाह नहीं कर रहे, इसके नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा नहीं हो रहे और पॉजिटिव बहुत कम है। ऑनलाइन पढ़ाई है या ये वो है, तो उसके इससे पहले भी तो लोग पढ़ते थे जो कि इस स्टेज पर पहुँचे हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच अफजल साहब। डॉक्टर साहब, मैं इनका सवाल के जवाब के लिए आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि इनका एक जनरल सवाल है। अभी मैं इसरा की तरफ जाना चाहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ए लेवल कर रही हैं। इसरा बात हुई, अमीर अहमद ने भी बात की और डॉक्टर साहब ने भी, कि वालदैन की जिम्मेदारी है। आप क्या समझती हैं कि आप इंटरनेट पर जो भी रिसर्च कर रही होती हैं, जो देख रही होती हैं, आपके पेरेंट्स को कितना पता होता है या वो आप पर कैसे चेक रख सकते हैं?
थैंक यू वेरी मच आर्या। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बेसिकली सब पता होता है, उन्होंने ऑलरेडी पहले गाइडलाइन दी हुई है कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और मेरा फ़ोन हमेशा ओपन होता है, उस पर कोई लॉक नहीं होता, ताकि मेरे पेरेंट्स को हमेशा पता रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या नहीं हो रहा है। उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस वजह से, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको सब बता देती हूँ। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मतलब सही बोला है, उनसे मैं रिलेट करती हूँ, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को अपना पर्पस नहीं पता होता कि वो क्यों सोशल मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं, इसी वजह से वो पोर्नोग्राफी और उस साइट्स पे जाते हैं। अगर उनको अपना पर्पस पता हो, फॉर एग्जांपल इसके बहुत पॉजिटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली अनस्टेबल है, उसको सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए, तो वो इजीली किसी सोशल मीडिया के थ्रू अपना कोई पेज खोल के ट्रेड स्टार्ट कर सकता है, दैट इज वेरी इजी।
और पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, मैंने खुद भी देखा है और मुझे काफ़ी मैं हैरान भी हुई कि लोगों को पाकिस्तान में इस बारे में शऊर है कि वो छोटी छोटी चीज़ों, बल्कि ख़ास तौर पर ये जो शादियों के इवेंट के लिए गिफ्ट भेजते हैं लोग एक दूसरे को, ये भी काम पाकिस्तान में हो रहा है। यानी इतनी छोटी सतह पर कि अगर आप किसी को गिफ्ट भेजना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस पर जाइए, उस पेज पर जाइए और उनको बताइए कि इस एड्रेस पर मैं इस तरह का इस ओकेजन इस मौके के लिए गिफ्ट भेजना चाहती हूँ, तो वो आपकी तरफ से गिफ्ट वहाँ पहुँचा दिया जाता है। यानी बिल्कुल असरा आपने कहा कि ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव आप काम ले सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आप तो आपके फ़ोन तक तो आपके पेरेंट्स को एक्सेस है, लेकिन आप बाकी जो मुशाहिदा करती हैं, आसपास लड़कियों को देखती हैं, लड़कों को देखती हैं, तो क्या वाकई पेरेंट्स जो हैं वो चेक रख सकते हैं, या फिर मतलब स्टूडेंट्स या नौजवान जो हैं वो छुप के बहुत कुछ कर सकते हैं और वालदैन को उसका पता ही नहीं चलता कि वो कैसे उसको चेक करें, तो ऐसा कुछ मतलब आपके मुशाहिदे में है?
जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल समझती हूँ कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स पे चेक रखें, इस वजह से क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इंडिविजुअल्स को पता नहीं होता है कि वो किस लेवल तक जा रहे हैं, तो पेरेंट्स इस पे ज़रूर चेक रखें। और रात के टाइम पे मेरा मशवरा ये होगा कि वाईफाई बंद कर दें, क्योंकि जब वाईफाई ऑन होता है तो उससे बहुत काम ख़राब हो सकता है, तो समझदारी इसी में है कि वो लोग चेक रखें।
और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि नौजवान سوتے ہوئے آخری کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں, اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, انسٹاگرام چیک کرتے ہیں, اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام بھی یہی ہوتا ہے. یعنی یہ ان کے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو باقاعدہ ریسرچ کے بعد سامنے ہیں. عبداللہ کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. عبداللہ, آپ جب آپ نے تعلیم بھی اپنی جاری نہیں رکھی اور اس طرح سے آپ انفارمیشن کے لیے یا پھر تعلیم کے لیے استعمال نہیں کرتے سوشل میڈیا کو, اگرچہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بہت سی اور ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے, تو آپ سے اسپیشلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں, سوشلائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کس طرح کی ویب سائٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں
آپ؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا. میں بیسیکلی جو ہے مطلب واٹس ایپ پہ اسٹیٹس وغیرہ لگا لیتے ہیں, فیس بک, مطلب فیس بک کے بھی اسٹیٹس آ گئے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں.
اچھا.
اور مطلب موویز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, مطلب موویز جو بھی ہوں, مطلب انڈین موویز ہیں, پاکستانی موویز آ رہی ہیں, ہالی ووڈ کی, بالی ووڈ کی, تو موویز دیکھتے ہیں, دیکھتا ہوں میں. بیسیکلی جو میں زیادہ تر یوز کرتا ہوں وہ اسٹیٹس کے لیے ہے, یا مطلب اگر کبھی کسی سے چیٹ کرنی ہو تو واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ چیٹ کر لی, یا مطلب میسنجر پہ چیٹ کر لی اس کے ساتھ.
جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اپنی آئیڈینٹیٹی چھپا کے تو جو وہ نہیں ہے وہ بن کے آپ کے ساتھ میسیجنگ چیٹنگ وغیرہ کی ہو؟
جی مطلب بہت دفعہ ہوتا ہے, مطلب کہ فیس بک پہ فیک آئی ڈیز بنی ہوتی ہیں, اس سے آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. مطلب کئی دفعہ اس طرح کہ میں نے میسیجز سے مطلب بات کیا تو بعد میں پتہ لگا مطلب یہ کوئی چیز فیک آئی ڈی تھی, یا مطلب کوئی اور بندہ تھا اور مجھے کچھ اور بن کے میرے سے باتیں کر رہا تھا.
صحیح. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابھی جو عبداللہ سے بات ہوئی اس بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ایسا ہوتا ہے فیک نیوز بھی آتی ہیں تو وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں؟ بہت ساری ایسی نیوز ہوتی ہیں جو ایک دم ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط نیوز تھی. اور دوسرے نمبر پر یہ جو فیک آئی ڈیز والا ہے, کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی لمٹس کراس نہ کریں اور ان کو پتہ ہو کہ اخلاقیات کیا ہے. تو عموماً جنرل ایک میں وہ بات کر رہی ہوں کہ لڑکے جو ہیں وہ کچھ بھی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کی کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ تو کوئی بہت ہی قریبی اور شخص تھا, اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ایتھکس میل اور فیمیل دونوں کے لیے برابر نہیں ہونے چاہیے, اور فیک آئی ڈیز سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس کو پہلے میں ڈیل کرتا ہوں.
صحیح.
انٹرنیٹ پر یا سوشل میڑیا کے تھرو آپ آن اتھینٹک, یعنی چلے میں اردو میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں اردو استعمال کروں, غیر تصدیق شدہ خبریں, سنسنی خیزی مبنی خبریں اور غلط خبریں جو ہیں وہ سرکولیٹ کرتی ہیں, پھیلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سورس کریڈیبلٹی پر ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی کر رہا ہے کہ ہم انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی خبریں کتنی کریڈیبل ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کا ہم موازنہ کر رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ, یعنی آپ کے نیشنل میڈیا, نیشنل پرائیویٹ نیوز چینلز اور اخبارات کے ساتھ نا. تو انٹرنیٹ میں ایک تو بدقسمتی سے کچھ ابھی تک ریگولیٹرز نے کچھ ایسے رولس نہیں بنائے ہیں کہ اگر آپ غیر تصدیق شدہ خبر اگر آپ پھیلائیں گے اور آپ کی خبر غلط ثابت ہو جائے گی تو پھر آپ کو آپ پر جرمانہ ہوگا, کچھ سرٹن چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. اس میں لوگوں کو مکمل آزادی ہے, آپ جو چاہیں پوسٹ کریں, سچی جھوٹی خبریں چلائیں, ایون سیاسی جماعتیں اور ان کے جو سوشل ورکر ہیں, آپ کے یہ علم ہوگا کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں ان کے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کی میٹنگز کرتی ہیں پاکستان میں, اور پی ایم ایل این بھی, پی ٹی آئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی میٹنگز کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تو ایک دوسرے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتی ہیں, اور انٹرنیٹ پر اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج ہے کریڈیبلٹی کا, اعتبار کا, کیونکہ آپ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پہ کسی کو اسکینڈلائز بھی کر سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہے, آپ بے بنیاد.
ڈاکٹر شہزاد آپ کی آواز کٹ گئی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی آواز آ رہی ہے.
جی اچھا جی شہزاد یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہے کوئی ایسی خبر آتی ہے جو بہت ہی افیکٹ کرتی ہے, مینٹلی افیکٹ کرتی ہے کسی کو بہت زیادہ ہیریس کر دیتی ہے, تو ایسا کوئی مطلب میکانزم موجود نہیں ہے کہ اس کی تردید آ جائے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ پتہ چل سکے کہ نہیں یہ خبر ٹھیک نہیں ہے؟
نہیں, اب اس کا تردید کا طریقہ کیا ہے؟ تردید تو یہی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ تردید کرے گی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا سیلیبریٹی اگر اس کے متعلق آپ کوئی اس طرح کی نیوز کرتے ہیں,
تو ذاتی سطح پہ ہو سکتی ہے.
جی جی
بالکل صحیح. ڈاکٹر شہزاد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری نوجوان نسل کی جو نمائندگی کر رہے ہیں, ایک والدہ ہمارے ساتھ ہیں جو خود بھی ورکنگ ویمن ہیں, जो काम करती हैं, प्रोफेसर हैं, और जिनकी एक बेटी है, दो बेटे हैं, तो मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि एज अ मदर जब उनकी इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो मुसलसल उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, तो वो ये कैसे यकीनी बनाती हैं कि उनके बच्चे इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। जी आसिया, डॉक्टर आसिया शहबाज़, आपको वेलकम करती हूँ शो में, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा।
बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। तो मैं वर्किंग मॉम हूँ और जैसा कि आपने कहा कि दो बच्चे हैं, एक बेटी है, तो बाकी बहुत मुश्किल काम है। तो इसकी सबसे पहली बात ये कि आप एज लिमिट रखें कि 15 साल या ज़्यादा 13 साल की उम्र से पहले बच्चे को फ़ोन और टैब वगैरह ऐसी कोई चीज़ ना दें। लेकिन ये कि सिर्फ ये नहीं कि आप ना दें, उस दौरान उसका जो टाइम है उसको गैप को फिल करें, उसको एक्टिविटीज़ दें ऐसी जो उस टाइम पीरियड में वो कर सके। मतलब अगर उसका क्रिकेट का शौक है या आर्ट का शौक है तो उसको इनक्रेज करें। उसके बाद जब आप समझते हैं कि उसकी उम्र 12-13 साल है, उसके सब क्लास वाले उसके पास फ़ोन है और आप उसे फ़ोन या स्मार्टफोन या टैब लेके देना चाहते हैं, तो आप उसको उसका इस्तेमाल करना बताएं। दूसरा, आप ये बताना बहुत ज़रूरी है कि गलत और सही क्या है। तीसरा, अब तक हमारे माशरे में वो चीज़ें जिनको हम घरों में डिस्कस नहीं करते, अब बहुत ज़रूरी है कि आप खुद उन्हें बच्चों से डिस्कस करें, बजाय इसके कि वो इसे नेट से और गूगल से सर्च करें और गलत सही मालूम खुद ही इकट्ठी करते रहें। तीसरा, आप उनका फ़ोन का और स्टडी का टाइम जो है उसको मैनेज करें।
बिल्कुल सही। डॉक्टर आसिया, मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं असरा अब्बासी, तो उनका ये कहना है कि उनके पेरेंट्स इस बात से आगाह रहते हैं कि वो क्या देख रही हैं और क्या नहीं देख रही, तो वालदैन के लिए क्या ये इतना ही आसान है ये जानना और इस बात की तह तक पहुंचना कि उनके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, किस समझ बढ़ रहे हैं?
बच्चे के साथ आप ऐसा रिलेशनशिप तो डेवलप कर सकते हैं कि वो आपसे बातें करता और जब आप कम्युनिकेशन में आप जान सकते हो। अदरवाइज आजकल के बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से इतना आगे हैं कि अगर वो ना दिखाना चाहें या ना बताना चाहें तो पेरेंट्स नहीं जान सकते वो क्या सर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री कैसे डिलीट करती हैं, आप डिफरेंट टैब जो खोली हैं उनको किस तरह शफल कर सकते हैं, वट एवर, वो सारे बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं। हाँ, आप अगर ट्रस्ट करते हैं, आप अगर आपस में रिलेशनशिप ऐसा है स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है कि आप बच्चे को ट्रैक कर सकें।
बिल्कुल सही। शामिल करती हूँ प्रोग्राम में अपने एक स्टूडेंट को जो नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमीर अहमद, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि फेक आईडी का इशू जो है वो सामने आया है, तो आपके ख्याल में ये कितना संजीदा नोयत का है?
काफी सीरियस इश्यूज में से है इस टाइम। अगर सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं तो फेक आईडी तो पाकिस्तान में, ओवरऑल वर्ल्ड का तो इतना नहीं पर पाकिस्तान में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल है, हर जगह पे, काफी जगह पे। हत्ता के हमारे यहाँ तो टीचर भी इस बात से पीछे, टीचर्स का भी उतना ही है कि हमारे अपने स्कूल में सर ने अपने फेक आईडी बना के स्टूडेंट्स पे चेक रखा हुआ था कि वो क्या करते हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को नहीं सोशल मीडिया पे अपने साथ रखते, तो चेक रखने के लिए ये भी हमारे अपने स्कूल का ही वाक्य है। उसके बावजूद, इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज में एक फेक आईडी का तो काफी ज्यादा है। आप किसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए फेक आईडी बनाना भी, एक तो हमारे यहाँ इसके बारे में काउंसलिंग भी नहीं है और दूसरा बनाना भी आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स के जो प्रोवाइडर्स हैं उनको नहीं पता कि शख्स ने कितनी आईडी बनाई है, तो इसलिए पाकिस्तान में तो एक एवरेज स्टूडेंट अगर कोई है तो दो आईडी हैं, तो दो फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी तो उसके पास होती हैं, एज अ बैकअप रखा हो या उसने किसी दूसरे मकसद के लिए बनाई हो, बट
होती होती है पाकिस्तान में
काफी ज्यादा। हर स्टूडेंट्स का हर एज बंदे में कुछ ने इसको एज अ बैकअप रखा हुआ है, कुछ ने अपने दूसरे मकसद के लिए रखा हुआ है, बट एक सर्टन है कि फेक आईडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा।
सही, आप हमारे साथ ही रहें। आसिया, अभी आपने कुछ बातें जो हैं वो बताई हैं कि आप किन किन उस पर रोशनी डाली है आपने, कि आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन कायम कर सकते हैं कि वो एतमाद में उनको ले सकते हैं कि वो आपके साथ शेयर करें कि वो क्या देख रहे हैं और उनको क्या तजस्सुस है किस बारे में। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हमारे जो देहातों में रहने वाले वालदैन हैं या कम पढ़े लिखे वालदैन हैं, उनके लिए कुछ थोड़ी सी हमें टिप्स दें कि वो अपने बच्चों को किस तरह की इन्फॉर्मेशन दें और किस तरह से उनको बताएं।
उनके लिए तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उनमें से अक्सरियत उनकी है जिनको इवन लैपटॉप ऑन करना नहीं आता। और अभी ये जो नई स्कीम आई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की थी, जो भी हर देहात में भी इवन बच्चों को थोड़े थोड़े मार्क्स वालों को भी वो लैपटॉप स्कीम कर दिए गए हैं, तो वहाँ पे ये मुश्किल ही नहीं, मैं तो कहूँगी नामुमकिन हो चुका है कि पढ़े लिखे पेरेंट्स जो से जब वो इस चीज़ के साथ नहीं चल सकते, तो उन पेरेंट्स को इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं कि गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे क्या क्या कुछ अवेलेबल है और उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से कि एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको चेंज करना चाहिए और बच्चों को आगाही देना फिर ओवरऑल इदारे गवर्नमेंट की या रियासत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। गाँव में ये कैसे पॉसिबल है कि एक पेरेंट जिसको पता ही नहीं कि लैपटॉप क्या है, वो ऑन कैसे होता है, भाई वो अपना फ़ोन तक ठीक करवाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए बच्चे के हाथ में देते हैं, वो किस तरह से बच्चे पे, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई भी टिप दी जा सकती है।
यानी वहाँ पर ज्यादा वल्नरेबिलिटी है गाँव में जहाँ पर वालिदैन को
बिल्कुल, अगर वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है और अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो,
और वालिदैन जो है उनको बिल्कुल नहीं पता कि चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है। तो अब्दुल्ला है हमारे साथ जिनका ताल्लुक एक गांव से है और उनकी तालीम भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब्दुल्ला आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आपके वालिदैन ने कभी आपसे पूछा है कि आप इस फोन पर या लैपटॉप पर क्या देखते हैं और क्या करते हैं?
जी मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है मतलब कि वालदा साहब मतलब पूछ लेती हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम लोग बस इस तरह हम पढ़ रहे हैं या मतलब अपना कोई साइंस मतलब काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, बस वो इससे इस जवाब से जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। बस मतलब फिर हम अपना मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, उनको तो नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, बस उन्होंने देखना है कि मतलब बच्चा कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे मतलब हिंसे या मतलब कुछ वर्ड्स लिखे आ रहे हैं जिसका मतलब वो पढ़ रहा है, और जो पिक्चर्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं उनको बस यही पता कि जी मतलब कि ये जो है कोई तालीम की बात हो रही है और वो उसके ऊपर है, या कोई मतलब अगर कोई अच्छी बात लिखी हुई है तो हम बताते हैं जी मतलब हम ये पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी बातें भी दिखा रहे हैं।
और चूंकि आपने तालीम भी जारी नहीं रखी तो आप मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे रोजाना इस्तेमाल करते हैं फोन का, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे जाते हैं?
मतलब मेरे पास सारा दिन टाइम फारग ही होता है तो मैं तो मतलब फिर यही करता हूँ, मतलब कि जब बंदा फारग मतलब कहीं बाहर नहीं जाना तो मतलब फिर नेट इस्तेमाल कर लो।
कोई गेम नहीं, कोई बाहर आप खेलते नहीं हैं अपने दोस्तों के साथ? क्या सब दोस्त इसी तरह से इंटरनेट पे ही मसरूफ रहते हैं?
हाँ जी, पहले मतलब गेमिंग शेमिंग होती थी, अब तो कोई नहीं है, मतलब अब हम मतलब फेसबुक पे मतलब कभी कभार होता है मतलब हमारा कोई प्रोग्राम हो कोई मतलब शिकार वगैरह पे जाने का तो हम लोग मतलब मिले नहीं तो फिर तो नहीं।
यानी दिलावर खान की इस बात से आप अग्री करते हैं कि वो कह रहे, उनका ये कहना था कि लोग पहले भी टाइम बहुत वेस्ट किया करते थे, एक्टिविटीज मुख्तलिफ तरह की हुआ करती थी, अब सारा वक्त जो है वो लोग इस पर इस्तेमाल करते हैं बल्कि ज़ाया करते हैं। दिलावर आपकी तरफ आऊँगी, काफ़ी देर से आप होल्ड पर हैं, आपने अपनी तालीम ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली है और उसके बाद आपने आप कुछ कारोबार में भी आपने अपना टाइम लगाया है, तो उसमें कितना फायदेमंद है इंटरनेट?
इंटरनेट जैसे कि इसको बहुत पहले से ग्लोबल विलेज की टर्म दी गई है कि इस वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि इंटरनेट आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस दे देते हैं। सभी डॉक्टर साहब ने जो डाटा दिया है कि हमारे पाकिस्तान में 3 करोड़ यूजर है फेसबुक के, तो अगर आपकी एक शॉप नहीं है, आपके पास खाली प्रोडक्ट है और आप आपको पता है कि आप इससे कंप्लीट कर सकते हो पूरी मार्केट को, तो जहाँ पे आप दुकान डाल के सिर्फ दिन के 10 ग्राहक मुश्किल से आते थे, वहां पे आप इसके एडवर्टाइजमेंट दे के एटलीस्ट 30 लाख तक आप डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अगर आपको 1% या 10% तक रिस्पॉन्स आता है तो। लेकिन अगर रिस्पॉन्स इससे छोटा भी है तो आप अगर वर्ल्ड वाइड अपनी शॉप को एडवर्टाइज करते हो तो आपकी वो प्रोडक्ट बगैर शॉप के बगैर किसी करीब खर्चे के आप बड़े लेवल तक उसको सेल कर रहे होते
और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं।
जी बहुत ज्यादा लोगों तक, लाइक वर्ल्ड वाइड अगर आप करते हो तो इतनी ज्यादा एक्सेस आपको आती है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। जैसे अभी पिछले दिनों में फिडेट स्पिनर एक आया था, वो एक्चुअली 20 या 25 रुपए का एक बैरिंग है,
सही।
उस बैरिंग को लोगों ने 3000 तक भी बेचा है,
सही।
तो ये इंटरनेट की वजह से सब पॉसिबल हो सकता है, वैसे ही इसकी अगर किसी शॉप पे पड़ा होता तो ये आज इतना फेमस ना होता।
तो दिलावर आप मुझे ये बताएं, आप ये जो तीनों स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आप उम्र में इनसे कुछ साल जो हैं वो बड़े हैं, तो आपके ख्याल में जैसे जैसे उम्र टीन एज से आप थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो क्या आप मैच्योर होते हैं या नहीं होते? क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि बड़ी उम्र तक भी लोग फेसबुक पर बैठे होते हैं और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और मतलब हर कोई बगैर सिन्फ के इम्तियाज के, बगैर उम्र के इम्तियाज के, हर एक को इसका जो आप कह लें कि लत लगी हुई है, तो आपने कुछ फ़र्क महसूस किया कि बढ़ती उम्र और मेच्योरिटी के साथ आपने इसके इस्तेमाल में कमी की है या आपको मज़ीद आगाही और शऊर आया है?
कमी तो नहीं हो सकती सदिया, इसमें देखिए जो मैच्योरिटी होती है वो बेसिक काउंट होती है, जैसे आपकी एज बढ़ती है और आपकी मैच्योरिटी बाकी चीज़ों में आती है वैसे ही एज बढ़ने के साथ साथ आपकी मेच्योरिटी सोशल मीडिया और बाकी वेबसाइट में भी होती है। आपको पता चल जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस नहीं करनी, तो उसके लिए आपको मच्योर होना पड़ता है। सोशल मीडिया के जैसे जैसे आप यूज करते हो वो आपकी सोशल मीडिया एज होती है। लाइक मैं अगर फेसबुक 5 साल से यूज कर रहा हूँ तो मेरी फेसबुक एज होगी 5 साल। 5 साल में जो मुझे मच्योरिटी आई है वो फेसबुक इस्तेमाल करने से आई है, लेकिन टाइम कम नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि मैं बाकी घटिया इन्फॉर्मेशन को छोड़ के अपनी मतलब की इन्फॉर्मेशन की तरफ जाता हूँ तो भी मुझे टाइम उतना ही सर्व करना पड़ता है जितना मैं पहले कर रहा था।
सही, और जैसे कि
इन्फॉर्मेशन बदल गई है।
सही, और जैसे अब्दुल्ला ने भी कहा कि उनके साथ कई दफा ये हुआ है कि फेक आईडी से उनको एक्सेस किया है किसी ने, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीजों से भी निमटने की आप में पता चल जाता है आपको कि कैसे इनसे डील करना है। तो बहुत शुक्रिया असरा, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके ख्याल में इंटरनेट की वजह से बाकी एक्टिविटीज़, आपकी दोस्तों के साथ जो आपके प्लान्स बनते हैं या बाहर आपका घूमना फिरना है वो कितना कम हो जाता है, या बाकी जो आप गैर निसाबी सरगर्मियाँ हुआ करती थी कभी, या फिर रीडिंग, बुक रीडिंग जो है वो कितना आपकी ज़िंदगी से कम हो गया सोशल मीडिया की वजह से?
मेरे ख्याल से एक्चुअली सोशल मीडिया आउटिंग्स के लिए एक बहुत अच्छी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन पहले अगर आपको ये नहीं पता होता था कि आप किससे कब मिल सकते हैं, अब आप एक सेकंड में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि फ्री हो या नहीं हो तो हम मिलते हैं और इस तरह करके। लेकिन लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फैमिली टाइम इससे बहुत इफेक्ट होता है। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। आप जो चीज़ें आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि आप फ़ोन में बिजी होते हैं। ये एक मेजर इसका प्रॉब्लम।
तो आप समझती हैं कि नौजवान नस्ल और जो वालिदैन हैं उनमें थोड़ा सा गैप बढ़ गया है?
जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल समझती हूँ। इस वजह से क्योंकि अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय वो फोन पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सारा जो जो उन्हें उनको बताना होता है, जो चीज़ें शेयर करनी होती है वो सारी फेसबुक स्टेटसेस पे और व्हाट्सएप स्टेटसेस पे और स्नैपचैट स्टोरीज पे लग रही होती हैं।
सही, हमारे साथ ही रहिएगा, आप चारों से फिर बात करना चाहूंगी। इस वक्त हमें माहिर नफ्सियात ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीद सुल्तान आवान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे पहले भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन चल रही थी, आपसे सिर्फ उसके जहनी सेहत को वो किस तरह से मुतासर करता है इस पहलू पर बात करना चाहूँगी कि नौजवान जो है हमारा आज का, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा, एक एनजाइटी जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट की, वो किस तरह से उसकी जहनी सेहत को मुतासर कर रही है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया सादिया, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया और इसको इस बड़े लेवल पे लेके आए। तो मैं आपको इसके हवाले से काफी सारी चीजें बताता जाऊंगा। एंजाइटी ही नहीं, काफी सारी और चीजें भी हैं, जैसा कि डीप थिंकिंग जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है आम लोगों में। अब आप देखें कि जब भी हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं तो वहाँ पर हम किसी चीज़ को भी डीपली नहीं देखते, हम सब सारी बस टच मोबाइल फोन से हम आगे आगे करते जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इसका वजह, ज़्यादा वजह ये है कि जब आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई आप देख रहे हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पे डिफरेंट किस्म के इमोशंस की चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, कहीं पे क्रिकेट आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो कहीं पे आपको किसी बार ज़्यादा एरिया का, जंग ज़्यादा एरिया की पिक्चर सामने शेयर की जा रही होती हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि आप करें क्या। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूं कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में एक नया डिसऑर्डर आइडेंटिफाई हुआ है जिसको बोलते हैं इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जो कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन ये अमेरिका में 8.2% जनरल पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया है। अब आप देखें कि ये डिसऑर्डर सिर्फ 2010 के बाद बना है, उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जनरल पॉपुलेशन अगर इसी रेशो से आगे चलती जाए तो 2030 या 2040 तक ये बाकी हम जैसे कंट्रीज को भी इफेक्ट कर लेगी। फिर आप देखें अगर हम बिहेवियरल इश्यूज पे बात करें, जैसा कि आपने एंजाइटी का भी नाम लिया, तो इसमें आप देखें कि ज़्यादातर ऐसे है कि जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं हम लोगों की पर्सनालिटी वैल्यूज़ को नहीं मेजर कर पा रहे होते, क्योंकि वो बंदा जो आम हालात में आप जिसके साथ बात भी नहीं कर पा रहे होते, कोई सीनियर बंदा है, कोई सीनियर ऑफिसर है, तो इंटरनेट पे या मोबाइल फोन के अंदर आपको वो उतना ही नजर आएगा जितना कोई और नजर आएगा, उसकी वैल्यू आप नहीं मेजर कर पा रहे होते। तो इसी वजह से आप
साइबर बुलिंग की तरफ चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे होते हैं जी कि देखो आज मुझे ये बुलिंग का मैं सामना कर पा रही हूँ। इवन कि मेल भी यही चीज वो कर रहे होते हैं जी कि देखो मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी फेक आईडीज की जैसे पहले भी बात हो चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर फेसबुक डिप्रेशन की अगर बात करें और फेसबुक की वजह से सैडनेस, तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तानी जो हैं एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपेरिजन के चक्रों में हम अपने आप को दूसरे से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। और फिर हम इंटरनेट पे तो सोशली हम बड़े एक्टिव होते हैं लेकिन पर्सनली लाइफ में हम सोशल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें से आपने बताया पहले कि पेरेंटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा मुतासर होती है। पेरेंट्स अपने इंटरनेट पे लगे होते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको वो कभी जानते भी नहीं है, इवन कि कभी देखा हुआ भी नहीं होता, और अपने बच्चों को वो ऐसे डांट रहे होते हैं क्योंकि उनको मूड का तो नहीं पता होता कि मेरे वालिद का अब्बी या वालदा का मूड क्या चेंज हो चुका है, उन्होंने मोबाइल पे क्या चीज देख ली और मैं उनसे किस हवाले से बात करूं, तो वो एकदम से जो अनवांटेड रिएक्शन आता है ना वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल होता है। फिर आप जी, और एक और चीज अगर आपको मैं शेयर करूं तो एस्केपिज्म जो है ना, मतलब किसी चीज से भी मसले से एकदम से जान छुड़ाने वाला सीन। अब आप देखें अक्सर पिछले दिनों बहुत ज्यादा एक वीडियो शेयर कर रहे थे जी कि ये इस्लाम मुल्क की हैं, जिस तरह से बर्मा की वीडियो शेयर की जा रही थी, तो वो आप फेसबुक पे उनको इग्नोर कर रहे होते हो, फलस्तीन की ये है उनको आप इग्नोर कर रहे होते हो। लेकिन इसी तरह से अगर कहीं रियल लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंसान के अंदर को जो अच्छा जो एटीट्यूड होता है, जो हम लोगों की तरफ हमदर्दी वाला एटीट्यूड होता है, वो कम हो जाता है। हम लोगों को रियल लाइफ में भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
यानी हसासियत, आपके कहने का मतलब है कि हसासियत जो है किसी भी मामले की, किसी भी हादसे की, वो कम हो जाती है।
वो कम हो जाती है बिल्कुल, और वो इस हद तक कम हो जाती है कि हम ना उसकी तरफ जाती नहीं है। और अक्सर लोग गाड़ी में बैठे हुए वीडियोस बना रहे होते हैं और बंदे की फिजिकली जाकर मदद करना ही नहीं चाहते। अक्सर आप नेट पे देखें कि फलां जगह पे हादसा हो गया है लेकिन मदद करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो फिर इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो क्योंकि यंगस्टर्स मेरी मुराद सिर्फ वो वाले लोग जो 15 साल से तकरीबन 35 साल तक की उम्र के होते हैं, जो इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, वो न्यू रिलेशनशिप्स बनाते हैं और फिर वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। अब उनके नया बनते टाइम तो उनको बहुत अच्छा क्रेज लग रहा होता है लेकिन जब वो टूट जाता है तो उनको बड़ा सदमा पहुंचता है और फिर उनके पास कोई नई जगह नहीं होती जहां पर जाके वो अपने सदमे को कम करें या किसी के साथ शेयर करें। इवन कि उनके घर में, फैमिली में, दोस्तों को भी नहीं पता होता कि जी उनके साथ क्या हो गया है। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बना रही होती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद सुल्तान, बहुत शुक्रिया। मैं अब आखिर में अपने जितने भी नौजवान हमारे साथ चारों मौजूद हैं उनसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। अहमद, आपकी तरफ आऊंगी, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ताल्लुकात बड़ी जल्दी बन रहे होते हैं और फिर उतनी जल्दी टूट रहे होते हैं और फिर उन ताल्लुकात का जो एक सदमा है आप वो झेल रहे होते हैं और उस सदमे को बांटने के लिए भी आपके साथ फिजिकली कोई मौजूद नहीं होता, तो आप कितना अग्री करेंगे इस बात से?
इस बात के लिए दोनों पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप एक लिहाज से अपने आप को एक राइट वे में सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया फ्रेंड या सोशल मीडिया पे दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, आप सोशलाइज कर रहे हो, बट आप उन लोगों के साथ सोशलाइज करें जिनको आप जानते हो या जिनको आप मिल चुके हो। एक अननोन बंदे के साथ आप फॉरन सोशलाइजिंग स्टार्ट कर देंगे, दोस्त बनाएंगे, तो डीप डाउन द हार्ट आपको भी पता है कि आप किसी मुकाम पे वहां से हर्ट होंगे, तो आप उस बंदे के साथ करें जिसको आप जानते हैं। अननोन बंदों के साथ सोशलाइजिंग करना सोशल मीडिया पे वो तो है पागलपन।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम कम रह गया है, दिलावर खान मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप मुझे जाने से पहले सिर्फ इस बात के बारे में, बल्कि आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स थे आपने उनकी बातें भी सुनी, कोई टिप दीजिए कि किस तरह से यूजफुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मुफीद इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
मुफीद इस्तेमाल के लिए तो आपको मैच्योरिटी की तरफ ही देना पड़ेगा, जो कि स्लोली स्लोली आएगी। आपको एकदम सोशल मीडिया की अवेयरनेस ना तो आ सकती है ना ही इसकी कोई बड़ी सलूशन है, लेकिन उसके लिए बेसिक टिप यही है कि जो खतरनाक ब्लॉगर्स होते हैं आप उनसे बच के रहिए। जैसे अभी अक्सर आपको लिंक्स मिलते हैं कि आप इसके बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, और आप लिंक खोलते हो तो इसमें एक घटिया सा ब्लॉग होता है जो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है कि कब जाके मेरे पैरों तले से जमीन निकलेगी। तो ऐसे ब्लॉग से اپنے آپ کو بتائیے, مطلب ان کو اپنی سوشل میڈیا سائٹ سے ہٹائیے اور اپنے جو فرینڈز وغیرہ ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم دیجیے, یکدم آپ کسی کو بھی اپنی اسپیس میں انوالو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے.
بہت شکریہ, بہت اچھی ٹپ دی ہے دلاور آپ نے. اور اسرا آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا ٹپ دیں گی اگر آپ کی دوستیں ہیں یا کوئی بھی نوجوان لڑکیاں ہیں, آپ ان کو کیا ٹپ دیں گی؟
میں ان کو بالکل دلاور بھائی سے میں اگری کروں گی, میں یہی ٹپ دوں گی ان کو کہ مطلب فرینڈ سرکل اپنا ضرور ایکسپینڈ کریں آپ, لیکن لمٹس کے ساتھ. آپ کو اپنی لمٹس پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہیں. اگر آپ کا نام خراب ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی کا نام خراب ہو رہا ہے.
بہت شکریہ اسرا, بے حد شکریہ. عبداللہ سے سوال کرنے کا ٹائم نہیں بچ پایا, میں اپنے تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے بہت معلومات ہمیں دی, بہت اچھی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. امید ہے جو سن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. سعدیہ اسد کو اور میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام, اس کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بان.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
افغانستان میں جاری دہشت گردی کے مسلسل واقعات کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرام جہان رنگ میں ماہرین سے بات کی ہے, ان کے تجزیوں کی تلخی سنیے. میرا پہلا سوال افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال سے تھا, جواب میں انہوں نے کہا,
میرے خیال میں افغانستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ جو ہے میڈیا کے ورکر پہ, جو جرنلسٹ فیملی ہیں اس پہ پہلے دفعہ افغانستان کے تاریخ میں اس لیول بڑے لیول کا حملہ ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ جو ہمارے جنگ کے خلاف یا تشدد کے خلاف جو ہماری آواز ہے اس کو دبایا جا رہا ہے, اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف حکومت ہے, ایک جانب طالبان ہے, دوسری جانب داعش ہے. اس وقت جب کہ داعش اگر کوئی خونریزی کر رہی ہے تو خود طالبان کا آپ کے خیال میں رول کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے یہ یہاں پہ اصل میں افغانستان سوائل سے, افغانستان کی ٹیریٹری سے ایک میدان جنگ کے طور پہ استفادہ کیا جا رہا ہے, اور ہم ایک بہت زیادہ ہی کمپلیکس وار میں ہیں, اور ہم بہت زیادہ ہی کمپلیکس سچویشن میں ہیں. دونوں طالبان اور آئی ایس ایس دونوں ہمیں مار رہے ہیں, تو ہم کسی ایک کو دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ نہیں سمجھ سکتے. اسی صورتحال میں یہ جو سچویشن ہے یہ اصل میں افغان وار بھی نہیں ہے, انٹرنل وار بھی نہیں ہے, یہ ریجنل وار کی اوپر پوری دنیا یہاں پہ جو ہے نا وہ ہے. پورا دنیا کے جتنے بھی نیشنز ہیں جن کو کنسرنز ہے ریجن میں, جن کو کنسرنز ہے اس علاقے میں, تو وہ وار کو آگے چلا رہے ہیں, اور ہم بہت ہی کمپلیکس سچویشن میں ہیں. اور کسی ایک کو دوسری کا سبسٹیٹیوٹ ٹھہرانا بھی میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا.
شاہد نذیر صاحب یہ بتائیے کہ ایک جانب تو کوششیں بڑی شدید ہو رہی ہیں, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریپروچمنٹ بھی ہو رہا ہے, حالات بہتر بھی ہو رہے ہیں, الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی فی الحال رکا ہوا ہے. اب یہ آل آف اے سڈن جو داعش نے اگر یہ حملہ انہوں نے کیا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے, تو کیا وہ کوئی نئی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات نہ ہو سکیں؟
تو یقینی طور پر جب ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں جو گراؤنڈ پر, خصوصاً طالبان نے تو اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے اسپرنگ آفینسو الخندق کے نام سے لانچ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ظاہر جو کندوز تھا اس کے علاوہ ہلمند میں اور قندہار میں کچھ حملے کیے ہیں. لیکن یہ جو ابھی داعش نے جو کلیم کیا ہے جہاں پر کابل سٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور سوسائڈ بمبنگ اور اس کی کوآرڈینیشن اور ٹائمنگ جیسے کی ہے کہ جہاں پر میکسیمم سیکیورٹی فورسز ریسپانس کرے اور اس کے علاوہ میڈیا آ جائے اور اس کے علاوہ ریسکیو ورکرز آ جائے, تو ایسے موقع پر یہ تو خیر ایک پریکٹس ہوتا ہے اور اس پریکٹس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کے پیچھے پھر کس طریقے سے دوسرا بمبنگ تیسری بمبنگ وہ کرا دیتے ہیں. لیکن اوور آل افغانستان کے سچویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی تشویشناک نظر آتی ہے وائلنس کے لحاظ سے, کہ داعش بھی اپنی طور پر کافی خطرناک حملے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ طالبان بھی, جو کہ امریکہ کا تو یہ ہے کہ 56% علاقہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, جبکہ بی بی سی کہتا ہے کہ نہیں 70% پر ان کا کنٹرول ہے. تو اس اگر 40% پر تقریباً ان کا مکمل کنٹرول ہے, تو یہ سچویشن دیکھ کر تو لگتا یہ ہے کہ پیرلل جو انتخابات آ رہے ہیں اس سے پہلے ایک پیرلل قسم کی حکومت, ایک پیرلل قسم کا فورس اور ایک متوازی پاور سینٹر کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ پاور سینٹر کچھ داعش اور کچھ طالبان اور کچھ جو دوسرے گروپ ہیں وہ ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ ابھی اس میں ایک ریجنل گیم ہوگا, اور وہ ریجنل گیم میں لگتا یہ ہے کہ اگر اس کا حل بھی افغانستان کا نکالنا ہوگا تو وہ ریجنل بیسس پر ہوگا, کیونکہ اب لگتا نہیں ہے کہ ایک ایکٹر یا ایک ملک کے پاس ان کے کوئی ڈانڈے ہیں یا ان کا کوئی کنٹرول ہے.
کیا یہ داعش جو ہے اب طالبان کے لیے بھی کوئی خطرہ بن گئی ہے؟
میرے خیال میں وہ اپنے اپنے پاور, اپنے اپنے اسٹرینتھ کو ظاہر کرنے کے لیے اور زیادہ گراؤنڈ گین کرنے کے لیے, زیادہ اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے اس قسم کے حملے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں قوتیں آپس میں بزد ہیں جہاں تک ان کے اہداف کو دیکھا جائے.
افغانستان میں جاری دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے آپ نے ایک خصوصی رپورٹ سنی. قمر عباس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.